ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली की 8वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज पुष्प महोत्सव पलाश 2025 का उद्घाटन किया। दिल्ली नगर निगम ने सभी कार्यालयों को 31 मार्च तक हर शनिवार को खोलने का निर्णय लिया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को वैश्विक स्तर पर ले जाएगी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। पूसा कृषि विज्ञान मेला आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 3 दिवसीय मेले का विषय उन्नत कृषि विकसित भारत है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि खेती भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि सरकार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कृषि के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है।
प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, क्योंकि विकसित भारत विकसित खेती के बिना नहीं बन सकता, किसानों के आगे बढ़े बिना नहीं बन सकता। उस दिशा में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं और उसी की एक कड़ी है ये किसान मेला। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अच्छे बीज कई फसलों के लिए अच्छे बीज की किस्में तैयार करती है।
श्री चौहान ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य है उत्पादन बढ़ाना। इस वर्ष कृषि विज्ञान मेले का मुख्य आकर्षण भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित अत्याधुनिक किस्मों और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत को वैश्विक स्तर तक ले जाने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परिकल्पना की गई है। नई दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय के आज 101वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने जोर देकर कहा कि देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करके वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है। शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएं।
आज भारत की 60% आबादी युवाओं की है, उसमें से ज्यादातर स्कूल एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी में रहते हैं। प्रधानमंत्री जी की जो आह्वान है, हमें अपना कर्तव्य निभाना है, भारत को 2047 तक विकसित भारत में परिवर्तित करना है, तब ये संभव हो पाएगा अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के नेतृत्व में हम देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर पाएंगे।
श्री प्रधान ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सीखे गए सामाजिक कौशल विद्यार्थियों के लिए भविष्य में बहुत लाभकारी होंगे।
भारत को बनाने के लिए, भारत को विश्व स्तर पे ले जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की परिकल्पना किया है। मैं बधाई देता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय की नेतृत्व को। आपने अग्रसर रहे, यू आर द फ्रंट रनर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020।
रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव द्वितीय नियुक्त किया गया है। श्री दास के चयन को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। वे तमिलनाडु कैडर के 1980 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। श्री दास का कार्यकाल अगले आदेश तक प्रभावी होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली की 8वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से आयोजित किया जाएगा। ये सत्र 3 दिन के लिए प्रस्तावित है। दिल्ली विधानसभा प्रशासन की जारी विज्ञप्ति के अनुसार सत्र के पहले दिन विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष का भी चुनाव किया जाएगा। वहीं सत्र के दूसरे दिन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का विधानसभा में अभिभाषण होगा और पिछली सरकार के कार्यों से संबंधित सीएजी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी। सत्र के तीसरे दिन उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी और सदन के उपाध्यक्ष का भी चुनाव होगा। राजधानी दिल्ली में नई सरकार के गठन के साथ ही सरकार के मंत्रियों ने सक्रियता के साथ काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश सिंह वर्मा ने दिल्ली के बारापुला फेज 3 के कॉरिडोर के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने नजफगढ़ के राव तुलाराम अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यहां सीमित संसाधन के बावजूद डॉक्टर बेहतर काम कर रहे हैं।
डॉक्टर्स की सीमित सुविधा होने के बाद भी दे आर डूइंग द बेस्ट जॉब। ना इनके पास डॉक्टरों की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तब भी मैं खासकर अपने एमएस जो बड़ी मेहनत करे डुअल चार्ज होने के बाद भी काफी काम कर रहे हैं, मैं उनकी तारीफ करूंगा।
इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दिल्ली के विकास को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से चर्चा की। दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति करदाताओं की सुविधा के लिए सभी कार्यालयों को 31 मार्च तक हर शनिवार को खोलने का निर्णय लिया है। निगम ने बताया है कि करदाता अब शनिवार को भी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपना संपत्ति कर जमा करा सकते हैं। निगम ने सभी संपत्ति करदाताओं से अंतिम तिथि से पहले संपत्ति कर जमा कराने की अपील की है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज द्वारका सेक्टर 16 में पुष्प महोत्सव पलाश 2025 का उद्घाटन किया। ये पुष्प महोत्सव दिल्ली में वसंत ऋतु के आगमन का जश्न मनाता है। इस अवसर पर श्री सक्सेना ने कहा कि ये महोत्सव प्रकृति, संस्कृति और आनंद को एक साथ लाता है, जो दिल्ली को फूलों का शहर बनाता है। एक रिपोर्ट।
दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA द्वारा आयोजित 5 दिवसीय यह सम्मेलन शहर के द्वारिका और मयूर विहार में आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव का पहला चरण 23 फरवरी तक द्वारिका में मनाया जा रहा है, जबकि दूसरा चरण 28 फरवरी से 2 मार्च तक स्मृति वन मयूर विहार फेज 3 में आयोजित किया जाएगा। इन 5 दिनों के दौरान आगंतुक पुष्प प्रदर्शन, विदेशी पुष्पों की प्रदर्शनी, मौसमी पुष्प और फूलों की व्यवस्था में भरे थीम आधारित उद्यान प्रतिष्ठानों को देख सकते हैं। DDA ने बताया कि महोत्सव के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं, प्रकृति की सैर और का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोग भाग ले सकते हैं। इसके अलावा फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रचनात्मक गतिविधियां, पुष्प रंगोली प्रतियोगिता, ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा। रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग ने रोहिणी जोन के स्कूली विद्यार्थियों के बीच स्वास्थ्य और स्वच्छता के स्तर को बढ़ाने के लिए आज स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ विद्यार्थी अभियान शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य स्कूलों में स्वच्छता को सुधारना और विद्यार्थियों के बीच बेहतर स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। निगम ने बताया है कि इस पहल के अंतर्गत हर महीने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 विद्यालयों को पुरस्कृत किया जाएगा, जो स्वच्छता, सफाई और संपूर्ण विद्यालय पर्यावरण को बनाए रखने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली पुलिस ने नशा मुक्त दिल्ली संदेश को आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज इंडिया गेट से थाना कर्तव्य पथ तक एक वॉकथॉन का आयोजन किया। अमर जवान ज्योति से शुरू हुए 4 किलोमीटर लंबी दूरी के इस वॉकथॉन में बड़ी संख्या में नागरिकों, पुलिसकर्मियों और कई गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। एक रिपोर्ट।
इस वॉकथॉन में खेल जगत की जानी मानी हस्तियों में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता क्रिकेट कोच संजय भारद्वाज, ओलंपिक रजत पदक विजेता रवि दहिया, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त कुश्ती खिलाड़ी सरिता मोर इत्यादि शामिल हुए। इस दौरान श्री दहिया ने लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की।
नशे से दूर रहे और नशे से दूर रहना ही सबसे जरूरी चीज है। उसके बाद आपकी जो भी फील्ड हो आप उस पर बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर पाओगे। अगर आप नशे में हो तो आप चाहे कोई भी फील्ड हो तो आप मतलब डिस्टर्ब रहोगे, आप तंग रहोगे और आपकी वजह से जो समाज है वो भी दुखी रहेगा।
वहीं इस अवसर पर बोलते हुए कुश्ती खिलाड़ी सरिता मोर ने दिल्ली पुलिस के प्रयासों की सराहना की और युवाओं से स्वस्थ रहने के लिए नशे की लत से दूर रहने का आग्रह किया।
दिल्ली पुलिस की एक बहुत ही अच्छी पहल है कि युवाओं में जो एक नशे से की लत है उसको दूर करने के लिए हम अपना योगदान उसमें कैसे दे सकते हैं, कैसे हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि नशे से दूर रहो।
इस वॉकथॉन में दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने नशा मुक्त दिल्ली अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी और लोगों से इस अभियान का हिस्सा बनकर नशा मुक्त दिल्ली बनाने की दिशा में अपना योगदान देने की अपील की। रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 119वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भविष्य के नेताओं के व्यक्तित्व को आकार देने में निरंतर सीखने, व्यक्तिगत आचरण और दार्शनिक सोच के महत्व पर जोर दिया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप के लीडरशिप कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नेतृत्व का मतलब केवल उच्च पद हासिल करना नहीं है, बल्कि जीवन भर लगातार सीखना, अभिव्यक्त करना और उत्कृष्टता हासिल करना है।
ये जो एक्सीलेंस है, ये स्वभाव से आता है। आपको स्वभाव में दिल्ली से जम्मू, जम्मू से आसाम, आसाम से कहीं जाना है, आप नियत समय पे तैयार होना, नियत समय पे अपने शरीर को ठीक रखना, अपने भोजन, तो जो अनुशासित चीज है, अनुशासन जो है, उत्कृष्टता जो आती है, ये किताबों से नहीं आती, ये जीवन को धारण करने से आती है।
श्री यादव ने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में व्यक्ति बाहरी घटनाओं और विचारों से आसानी से विचलित हो सकता है। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रोजमर्रा की जिंदगी की उथल पुथल के बीच फोकस और शांति बनाए रखने के लिए नेताओं को तटस्थता और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। नई दिल्ली स्थित दिल्ली पुलिस अकादमी में आज प्रशिक्षुओं के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में 2100 से अधिक प्रशिक्षु शामिल हुए। इनमें 1099 पुरुष और 1019 महिलाएं मौजूद थी। दिल्ली पुलिस अकादमी ने बताया कि ये सभी प्रशिक्षु प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं और अब दिल्ली पुलिस में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में आज दोपहर के समय धूप खिलने से मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। कल का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में आज अवकाश वाले दिन देश भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस वर्ष मेले के साझेदार राज्य मध्य प्रदेश और ओडिशा है। मेले में मिस्र, इथियोपिया, सीरिया, अफगानिस्तान, बेलारूस सहित लगभग 42 देशों के लगभग 600 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसके अलावा बिम्स्टेक देशों बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड सहित कई देश भी मेले में भाग ले रहे हैं। इस मेले का उद्देश्य हस्तशिल्प उत्पाद और हथकरघा को बढ़ावा देना है। सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा केंद्रीय पर्यटन, वस्त्र, संस्कृति और विदेश मंत्रालयों के सहयोग से आयोजित इस मेले के लिए आगंतुक टिकट मेला स्थल पर निर्धारित काउंटरों तथा दिल्ली मेट्रो के ऐप दिल्ली सारथी 2.0 से खरीद सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों पर भी टिकट खरीदे जा सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार तथा सांस्कृतिक समूह अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। इसके अलावा शाम को मुख्य चौपाल में मंत्रमुग्ध कर देने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। कल इस मेले का समापन हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आज से जश्न अदब साहित्य महोत्सव शुरू हुआ है। 3 दिवसीय ये महोत्सव कला, साहित्य, संस्कृति और संगीत को प्रदर्शित कर रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की 8वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज पुष्प महोत्सव पलाश 2025 का उद्घाटन किया। दिल्ली नगर निगम ने सभी कार्यालयों को 31 मार्च तक हर शनिवार को खोलने का निर्णय लिया। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को वैश्विक स्तर पर ले जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।